ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष रैली का मुख्य विषय है युवा शक्ति विकसित भारत। आयोजन में 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जहां राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की प्रतिबद्धता दर्शाई जाएगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 कैडेट भी भाग लेंगे। इस रैली में मेरा युवा भारत, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के देश भर से 650 से अधिक स्वयंसेवक विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उत्तराखंड आज समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड ऐसा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करते हुए समाज में एकरूपता लाएगा। समान नागरिक संहिता अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यूसीसी को लागू करने के लिए नियमों की मंजूरी और संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि सरकार दो अधिसूचनाएं जारी करेगी, एक यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए और दूसरी नियमों तथा विनियमों के लिए, जो राज्य में इस कानून के आधिकारिक शुभारंभ को चिन्हित करेगी। उत्तराखंड यूसीसी कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम बनाना है। इस कानून के 4 भागों और 7 अध्यायों में 392 धाराएं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में भाग लेने के लिए आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाएंगे। श्री शाह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करेंगे। गृहमंत्री पुरी और द्वारिका के शंकराचार्य सहित कई संतों से मुलाकात कर सकते हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और रोड शो में जुटे हैं। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ करने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रशंसा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि तब की यूपीए सरकार ने 26/11 के हमले में दोषी तहव्वुर राणा को सजा दिलाने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मस्कट में संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज 2 दिन की यात्रा पर ओमान जाएंगे। इस दौरान वे ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद बिन मूसा अल यूसुफ के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मंत्री व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक स्थिति पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी 2 दिन के दौरे पर चीन में हैं। वे कल ही चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। विदेश सचिव आज चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 1.5 महीने से भी कम समय में भारत के किसी प्रतिनिधि की यह चीन की दूसरी हाई प्रोफाइल यात्रा होगी। चीन ने मिसरी की इस यात्रा का स्वागत किया और इसके परिणाम के बारे में सकारात्मक बात की। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश और क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनका नाम पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। इस वर्ष कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान करेंगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पुरुष आइस हॉकी का खिताबी मुकाबला आज भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बीच लेह में खेला जाएगा। पिछले वर्ष फाइनल में शूटआउट में सेना विजयी रही थी। कल भारतीय सेना ने एनडीएस स्टेडियम में मेजबान लद्दाख को 2-1 से और आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।